सिख शाहजहां के आरंभ काल में 1628 ईस्वी में एक साधारण घटना से सिखों और शाहजहां के में शत्रु भाव उत्पन्न हो गया। अमृतसर के निकट शाहजहां शिकार करने गया हुआ था। उसका एक प्री बाज उड़कर गुरु के खेमे में चला गया। सिखों ने उसे पकड़ लिया तथा वापस लौटाने से इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों ने कई बार सिखों पर आक्रमण किया परंतु वे असफल रहे। गुरु गोविंद के कुछ मित्र बादशाह के दरबार में भी थे। उन्होंने बीच में पकड़कर इस झगड़े को समाप्त कर दिया। गुरु गोविंद ने ब्यास नदी के तट पर श्री गोविंदपुर नामक एक शहर बसाना आरंभ किया था। गुरु के दुश्मनों ने जालंधर के फौजदार अब्दुल्ला खां को गुरु पर आक्रमण करने के लिए भड़काया। संभवतया इसी नवीन नगर का निर्माण मुगलों के हित में भी न था। गुरु की आज्ञा दी गई कि वह नगर निर्माण के कार्य को बंद कर दें। उनके इनकार करने पर उन पर आक्रमण किया गया, परंतु इस बार भी गुरु ने फौजदार की सेना को परास्त कर दिया। गुरु से मुगलों का तीसरा झगड़ा इस कारण हुआ कि विधि चंद्र नामक एक विख्यात डकैत ने, जो गुरु का शिष्य था, शाही घुड़साल से दो बहुत अच्छे घोड़े चुरा कर गुरु को भेंट किए और गुरु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। एक शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध भेजी गई, परंतु गुरु ने उसे प्राप्त कर दिया 1613 ईस्वी में। एक बड़ी और सेना को गुरु ने करतारपुर नामक स्थान पर परास्त किया। इसके उपरांत मुगलों और सिखों का संघर्ष चलता रहा। गुरु ने यह अनुभव किया कि मुगल सत्ता से निरंतर संघर्ष करने में नवीन सिख संप्रदाय को समाप्त हो जाने का भय है। पंजाब छोड़ दिया और कश्मीर की पहाड़ियों से कीरतपुर नामक स्थान पर रहना आरंभ कर दिया। वहीं 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। अपने मरने से पहले उन्होंने हर राय को गुरु की गद्दी सौंप दी। इसी प्रकार शाहजहां के समय में सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद से मुगलों का संघर्ष रहा। दूसरा, साम्राज्य विस्तार। पहला, दक्षिण भारत। अकबर और जहांगीर के समय में दक्षिण को जीतने के प्रयत्न किए गए थे। मुगलों की साम्राज्यवादी नीति का वह एक भाग था। शाहजहां ने भी इस कार्य को करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के राज्यों में मुगलों के विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। शाहजहां इस स्थिति को समाप्त करना चाहता था। पहला, अहमदनगर। शाहजहां के गद्दी पर बैठने से पहले खानजहां ने बालघाट का प्रदेश अहमदनगर को सौंप दिया था। बाद में खानजहां ने विद्रोह करके अहमदनगर में शरण प्राप्त की थी। उसी अवसर पर 1629 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना को दक्षिण भेजा गया और स्वयं शाहजहां बुरहानपुर पहुंच गया। मुगलों ने आंशिक सफलता प्राप्त की। उसी अवसर पर निजाम शाह ने मलिक अंबर के अयोग्य पुत्र फतेह खां को राज्य का वजीर बना दिया। फतेह खां दुर्बल बुद्धि का स्वार्थी व्यक्ति था। कभी उसने मुगलों से बात की और कभी बीजापुर तथा गोलकुंडा से मित्रता करने का प्रयत्न किया। उसने सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को कैद करके मार डाला था तथा 10 वर्ष के एक छोटे बालक हुसैन को निजाम बना दिया। शाहजहां फतेह खां पर विश्वास नहीं करता था। उसने मुगल सेना को दौलताबाद पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिए। इससे डरकर फतेह खां ने शाहजहां को बहुमूल्य उपहार भेजे तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शाहजहां इससे संतुष्ट हो गया। उसका मन दक्षिण के युद्ध में नहीं लग रहा था, क्योंकि 17 जनवरी 1631 ईस्वी में उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। इस कारण अपने अधिकारियों को दक्षिण का उत्तरदायित्व सौंप कर शाहजहां स्वयं उत्तर चला गया, जो 1632 ईस्वी की घटना है। परंतु अभी अहमदनगर की विजय पूर्ण भी नहीं हुई थी कि 1633 ईस्वी में जब महामद खां दक्षिण पहुंचा तो वह फतेह खां की दोहरी नीति से बहुत असंतुष्ट हुआ। उसने दौलताबाद का घेरा डाल दिया। 3.5 महीने के घेरे के पश्चात दौलताबाद के किले को जीत लिया गया। फतेह खां और अहमदनगर के अंतिम शासक हुसैन शाह को राजदरबार में भेज दिया गया और अहमदनगर को मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जो घटना 1633 ईस्वी की है। शाहजहां ने फतेह खां को 2,00,000 रुपया प्रतिवर्ष पेंशन दे दी और उसे राज्य की सेवा में ले लिया। हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। इस प्रकार अहमदनगर का राज्य समाप्त हो गया, परंतु तब भी निजामशाही सरदार और मुख्यतया शाहजी भोंसले ने एक बच्चे मुर्तजा तृतीय के नाम से मुगलों से कई वर्ष तक संघर्ष किया। 1636 ईस्वी में मुगलों ने शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया। अंत में उसने अपने बहुत से किले और मुर्तजा द्वितीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। दूसरा, गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक सिया थे और गोलकुंडा के शासक सिया थे और मुगल बादशाह के आधिपत्य को उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। इस कारण शाहजहां के समय में उसे मुगल आधिपत्य में लेने का प्रयत्न किया गया। 1626 ईस्वी में मुहम्मद कुतुब शाह की मृत्यु हो गई और 11 वर्ष का आयु अब्दुल्ला कुतुब शाह बना। उसके समय में गोलकुंडा की स्थिति दुर्बल हो गई क्योंकि राज्य के विभिन्न सरदारों में एकता न रही। शाहजहां ने इस दुर्बलता का लाभ उठाया। 1631 ईस्वी में जब बीजापुर पर आक्रमण किया गया तब गोलकुंडा से भी वार्षिक कर मांगा गया। गोलकुंडा ने धन देने से इनकार कर दिया। 1636 ईस्वी में मराठों और बीजापुर की संधि करने के लिए बाध्य करने के पश्चात गोलकुंडा पर दबाव डाला गया। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली, जिसके अनुसार पहले 4 खलीफाओं के नाम के अतिरिक्त शाहजहां का नाम खुतबे में और गोलकुंडा के सिक्कों पर सम्मिलित होगा। ब, गोलकुंडा ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया और 8,00,000 रुपया प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। उसने पिछले वर्षों में न दिए गए 32,00,000 रुपये को भी देना स्वीकार किया। स, बीजापुर या मराठों के आक्रमण के अवसर पर मुगल गोलकुंडा की सहायता करेंगे और यदि सहायता नहीं करेंगे तो जो हानि गोलकुंडा की होगी उसकी पूर्ति करेंगे। दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगजेब। शाहजहां उस समय दक्षिण में था, परंतु इस संधि के पश्चात वह औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर दिल्ली चला गया। 1636 ईस्वी में से 1644 ईस्वी तक 1644 ईस्वी तक औरंगजेब पहली बार दक्षिण का सूबेदार रहा और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण के सूबे की राजधानी बनाया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत की मुगल भूमि को 4 प्रांतों में विभाजित किया। खान देश, जिसकी राजधानी बुरहानपुर थी, जिसके अंतर्गत असीरगढ़ का दृढ़ किला था। दूसरा, बरार, जिसकी राजधानी इलिचपुर थी। तीसरा, तेलंगाना, जिसकी राजधानी नंदेड़ थी। चौथा, अहमदनगर, जिसमें अहमदनगर राज्य की छीनी हुई भूमि थी। इस भूप्रदेश में 64 दृढ़ किले थे। अपने इस काल में औरंगजेब का एकमात्र कार्य बगलाना के छोटे से राज्य का विजय करना था। 1652 से 1657 ईस्वी तक औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार रहा। उस समय दक्षिण के मुगल सूबों की स्थिति शोचनीय थी। अयोग्य और निरंतर बदलते रहते सूबेदारों ने इन सूबों की आर्थिक स्थिति नष्ट कर दिया था। जिन सूबों से 4 करोड़ रुपया वार्षिक आय की आशा की जाती थी, उनसे 1652 ईस्वी में केवल 1 करोड़ रुपये की आय हुई थी। पड़ोस में शत्रु राज्यों के होने के कारण मुगलों को वहां एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त भी शासन का व्यय अधिक था। इस कारण इन सूबों की आय सूबों के व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी प्रकार आय में कमी होने के कारण जागीरदार उतनी मात्रा में सैनिक नहीं रख पा रहे थे जितनी मात्रा में उनसे आशा की जाती थी। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने सर्वप्रथम आर्थिक और प्रशासकीय सुधारों की ओर ध्यान दिया। उसने मुर्शिद कुली खां खुरसानी की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ठीक किया। मुर्शिद कुली खां ने राजा टोडरमल और मलिक अंबर की लगान व्यवस्था के आधार पर भूमि सुधार किए। मुर्शिद कुली खां ने लगान व्यवस्था के लिए मुगलों की भूमि को 2 भागों में बांटा। पहला, पेन घाट, जिसमें खानदेश और बरार का आधा भाग सम्मिलित था। दूसरा, बालघाट, जिसमें मुगलों का बाकी सभी भू क्षेत्र सम्मिलित था। दोनों भागों के शासन के लिए उसने 2 उपदीवान नियुक्त किए। उसने भूमि की पैमाइश कराई, उत्पादन के आधार पर भूमि को अलग अलग वर्गों में बांटा तथा किस किसान के पास कितनी और किस प्रकार की भूमि है इसका पता लगाया। उसने प्रत्येक स्थान पर ईमानदार और विश्वासपात्र अधिकारियों की नियुक्ति की। किसानों से तकावी के रूप में उधार लिए गए। धन को वसूल किए जाने पर उस गरीब किसानों में बांट दिया गया जिससे वे बैल और बीज खरीद सके। किसानों से लगान के रूप में उत्पादन का 1/4 भाग लिया गया। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए लगान वसूल करने के विभिन्न तरीके अपनाए गए। कहीं पर हलों की संख्या के प्रयोग के आधार पर उत्पादन का अनुमान करके लगान वसूल किया गया और कहीं पर वस्तु के उत्पादन के आधार पर लगान वसूल किया गया। मुर्शिद कुली खां के सुधार लाभकारी सिद्ध हुए। कुछ ही वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई और उसके अनुसार राज्य की आय में वृद्धि हुई। इतिहासकार भीमसेन ने लिखा है, 1658 ईस्वी में औरंगाबाद के निकट भूमि का कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं रहा जिस पर कृषि न हो रही हो। लगान संबंधी सुधारों के अतिरिक्त औरंगजेब ने असैनिक और सैनिक व्यवस्था में भी सुधार किए। उसने शासन से अयोग्य व्यक्तियों को हटा दिया और उनके स्थान पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की। सेना के दोषों को भी औरंगजेब ने दूर किया। पुनः गोलकुंडा उसी अवसर पर औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के प्रभुत्व को पूर्णतया समाप्त करने का प्रयत्न किया। गोलकुंडा 1636 ईस्वी में की गई संधि की शर्तों को पूर्ति नहीं कर रहा था। औरंगजेब के लिए एक सुऑफर था। उसकी निगाहें गोलकुंडा की संपत्ति पर लगी हुई थी। वह मध्य एशिया और कंधार में हुए अपने असफल आक्रमणों का अपमान धोना चाहता था तथा दक्षिण के राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि करना चाहता था। गोलकुंडा द्वारा वार्षिक कर को पूरी तरह न दे पाने का बहाना उसके पास था। मीर जुमला की घटना से उसे शाहजहां की आज्ञा से गोलकुंडा पर आक्रमण करने का आज्ञा प्राप्त हो गई। मीर जुमला का असली नाम मीर मुहम्मद सैयद था जो 25 वर्ष पहले गोलकुंडा आया था। यह प्रसिद्ध फारसी व्यापारी था। इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसने अपनी योग्यता से अब्दुल्ला कुतुब शाह को प्रसन्न कर लिया और राज्य का वजीर बन गया। उसने शक्ति और धन एकत्रित करने में सफलता प्राप्त की। वह राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। उसने कर्नाटक पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। एक प्रकार से कर्नाटक की भूमि जो 30 मील लंबी और 50 मील चौड़ी थी उसकी व्यक्तिगत जागीर बन गई। उसने व्यापार और लूटमार से अतुल संपत्ति भी एकत्रित कर ली। एक फ्रांसीसी यात्री थोवेनाट ने लिखा है, उनके पास 20 मन वजन के हीरे थे। मीर जुमला ने अपनी एक व्यक्तिगत सेना भी तैयार कर ली थी जिसमें 5,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल और एक अच्छा तोपखाना था। कुतुब शाह उसकी बढ़ती हुई शक्ति से संकित हो गया और जब मीर जुमला ने कर्नाटक को कुतुब शाह के आधिपत्य में देने से इनकार कर दिया तब उसका संदेह विश्वास में परिणित हो गया। उसने मीर जुमला को कैद करने का प्रयत्न किया। मीर जुमला ने फारस बीजापुर और मुगलों से बातचीत आरंभ की। शाहजहां ने मीर जुमला को अपनी सेवा में ले लिया और कुतुब शाह को आदेश दिया कि वह मीर जुमला को दिल्ली भेज दे। इसी बीच मीर जुमला के पुत्र अमीन के अशिष्ट व्यवहार के कारण कुतुब शाह ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को कैद कर लिया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली। शाहजहां की स्वीकृति लेकर औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजहादा मुहम्मद को जनवरी 1656 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण करने का आज्ञा दे दी। मीर जुमला पहले ही मुगलों से आकर मिल गया था। शाहजहां के आदेश से कुतुब शाह ने उसके पुत्र और परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया परंतु औरंगजेब मीर जुमला की संपत्ति और बकाया मूल कर को मुगल कर को गोलकुंडा से लेने के उद्देश्य से स्वयं गोलकुंडा की ओर चल दिया। मुगलों ने औरंगजेब को गोलकुंडा से अपनी सेनाएं हटा लेने के शाहजहां के आदेश प्राप्त हुए। कुछ समय औरंगजेब ने इस आदेश पर को गुप्त रखा और किले का घेरा डाले रखा परंतु शीघ्र ही संधि करना आवश्यक हो गया। इस कारण उसी वर्ष 1656 ईस्वी में गोलकुंडा से संधि कर ली गई। कुतुब शाह ने अपने एक पुत्री की शादी शहजादा मोहम्मद से कर दी। 10,00,000 रुपया दहेज में दिया। 16,00,000 रुपये युद्ध के हर्जाने का दिया। मीर जुमला की संपत्ति वापस कर दी। अवशिष्ट कर देने का वायदा किया और मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। मुगल आधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। तीसरा, बीजापुर। बीजापुर ने सर्वदा मुगल बादशाह के विरुद्ध अहमदनगर को सहायता दी थी। इस कारण बीजापुर स्पष्ट रूप से दक्षिण में मुगल प्रभाव को बढ़ने देने के विरोध में रहा था। जहांगीर की मृत्यु से कुछ साल पहले सुल्तान इब्राहिम शाह की मृत्यु हो गई और मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान बना। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने आसफ खां को बीजापुर पर आक्रमण करने के आदेश दिए परंतु आसफ खां का आक्रमण विफल रहा। शाहजहां ने आसफ खां को वापस बुला लिया और महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। महावत खां ने दौलताबाद को जीतने और अहमदनगर के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने में सफलता पाई, परंतु वह परेंद्र के किले का जीतने में असफल रहा। अक्टूबर 1634 ईस्वी में बीमारी और इस असफलता के धक्के के कारण महावत खां की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शाहजहां का ध्यान जुझर सिंह के विद्रोह की तरफ गया और बीजापुर के विरुद्ध सफलता न मिल सकी। सोलह सौ छत्तीस में शाहजहां स्वयं दौलताबाद गया। बीजापुर की स्थिति उस समय दुर्बल थी। मुगल मुहम्मद आदिल शाह और सरदारों को नियंत्रण रखने में असमर्थ रहा था। ऐसी स्थिति में शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण किया। शाहजहां के इस आक्रमण ने बीजापुर को भयभीत कर दिया और वह संधि के लिए तैयार हो गया। 1636 ईस्वी में इस संधि के अनुसार बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया और 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देना स्वीकार किया। बीजापुर ने वायदा किया कि यदि शाहजी भोंसले ने चुनार और त्रियंबक के किले मुगलों को न सौंपे तो वह मुगलों की सहायता करेगा। बीजापुर ने गोलकुंडा से मित्रता की और उनसे होने वाले अपने झगड़े का निर्णय मुगलों द्वारा कराने का वायदा किया। शाहजहां ने स्वेच्छा से परेंद्र, विदर, गुलबर्गा, सोलापुर स्थान बीजापुर को दे दिए। इस प्रकार 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसी वर्ष गोलकुंडा ने भी मुगलों से संधि कर ली और शाहजी ने मुगलों की संधि करके बीजापुर की सेवाएं प्राप्त की। 1636 ईस्वी का समय मुगलों की दक्षिण नीति के संबंध में महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, इस प्रकार 40 वर्ष 1595 से 1636 ईस्वी के संघर्ष के पश्चात अंत में दक्षिण के मामलों का निर्णय हुआ। बादशाह की सत्ता निर्विवाद स्थापित हो गई, उसकी सीमाएं निश्चित हो गईं और दक्षिण के राज्यों पर संप्रभुता स्थापित हो गई। दक्षिण के राज्यों पर उसकी संप्रभुता विधिवत स्थापित हो गई। 1636 ईस्वी में हुई संधि के पश्चात प्रायः 20 वर्षों तक बीजापुर में शांति रही। मुहम्मद आदिल शाह एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने शाहजहां से अपने संबंध ठीक किए। नवंबर 1656 ईस्वी में आदिल शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी बेगम बड़ी साहिबा की सहायता से उसके तथाकथित 18 वर्षीय पुत्र को आदिल शाह द्वितीय के नाम से गर्गद्दी पर बैठा दिया गया। यह विश्वास किया जाता है कि आदिल शाह के कोई पुत्र न था और बड़ी साहिबा ने उस लड़के को वैसे ही अपना पुत्र मान लिया था। औरंगजेब ने इस बात की सूचना शाहजहां को दी। उस समय शाहजहां ने बीजापुर को पूर्णतः अपने अधीनता में लाने का ऑफर खो दिया। बीजापुर का यह दोष लगाया गया कि उसने वार्षिक कर पूरी मात्रा में नहीं दिया। उसने गोलकुंडा की सहायता सेना को संगठित किया। उसने कर्नाटक की मीर जुमला की भूमि पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार शाहजहां ने औरंगजेब को बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया और मीर जुमला तथा अन्य अधिकारियों को उसकी सहायता के लिए भेजा। मुगल सेना ने बीदर के किले को जीत लिया। गुलबर्ग में एकत्रित बीजापुर की सेना को नष्ट कर दिया और अगस्त 1657 ईस्वी में कल्याणी के किले को भी जीत लिया। इसके पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया, परंतु उसी समय शाहजहां के आदेश प्राप्त हुए कि बीजापुर से जो संधि के लिए तैयार है संधि कर ली जाए और मीर जुमला को दिल्ली वापस भेज दिया जाए। औरंगजेब को संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1657 ईस्वी में हुई इस संधि के अनुसार बीजापुर ने 1.5 करोड़ रुपया मुगलों को देना स्वीकार किया। इसमें 50 लाख रुपया शाहजहां ने उदारतापूर्वक माफ कर दिया। इसके अतिरिक्त बीदर और कल्याणी के किले मुगलों की अधीनता में रहे, परंतु इसी अवसर पर शाहजहां की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसके पुत्रों में परस्पर युद्ध की आशंका बढ़ गई। अब उसी समय औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा के साथ युद्ध करने में व्यस्त था। शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का कार्य आरंभ किया और मुगल सीमाओं पर आक्रमण करने आरंभ किए। औरंगजेब ने एक सेना शिवाजी के आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसने शिवाजी को परास्त कर दिया। इसके पश्चात बीजापुर से संधि हो जाने के बाद शिवाजी ने भी मुगलों में से समझौता कर लिया और मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शाहजहां के समय में मुगलों की दक्षिण नीति असफल रही। अहमदनगर को राज्य की पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। बीजापुर तथा गोलकोंडा की भूमि छीन ली गई। कुछ किले हस्तगत कर लिए गए, उनसे धन प्राप्त किया गया, उनकी शक्ति को दुर्बल कर दिया गया और उन्हें स्पष्ट रूप से मुगलों की अधीनता में ले लिया गया। संभवतया बीजापुर और गोलकुंडा के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया होता यदि स्वयं शाहजहां ने औरंगजेब के मार्ग में बाधा डालकर उनको जीवित रहने का अवसर प्रदान न किया होता। शाहजहां स्वयं दक्षिण की राजनीति से गंभीरता से परिचित था और उसका यह अनुमान उचित ही था कि इन राज्यों को समाप्त कर देने से दक्षिण की राजनीति और अधिक जटिल हो जाएगी। इस कारण वह इन राज्यों को दुर्बल करके और उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराकर ही संतुष्ट हो गया। यह भी विश्वास किया जाता है कि शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह और पुत्री जहानारा इन राज्यों को समाप्त करने के पक्ष में न थे। दारा शिकोह को औरंगजेब की बढ़ती हुई शक्ति और सम्मान से खतरा हो सकता था। इस कारण उनके प्रभाव में शाहजहां ने इन राज्यों को अस्तित्व रहने दिया। शाहजहां की बीमारी और उत्तराधिकारी के लिए युद्ध की संभावना भी इन राज्यों को जूझ रह जाने के कारण बनी। दूसरा, कुछ छोटी विजय। शाहजहां के समय में कुछ छोटे छोटे प्रदेश भी जीते गए। मालवा गौंड के भीलों को मुगल आधिपत्य में लिया गया। पालमऊ के राजा प्रताप को मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और छोटे तिब्बत को भी जीता गया। 1634 ईस्वी में छोटे तिब्बत के राजा ने शाहजहां को आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1628 से 1639 ईस्वी के समय में असम से निरंतर युद्ध होता रहा, परंतु अंत में सीमाएं निश्चित कर ली गई और असम से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। तीसरा, मध्य एशिया। अपने से पहले के सभी मुगल बादशाहों की भांति शाहजहां भी मध्य एशिया को जीतने के लिए उत्सुक था। 1628 ईस्वी और 1629 ईस्वी में मध्य एशिया के शासक इमाम कुली उज्बेग ने काबुल को जीतने का प्रयत्न किया था, परंतु असफल रहा था। बाद में इमाम कुली खां के भाई नजर मुहम्मद को ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1645 ईस्वी में उसके पुत्र अब्दुल अजीज ने विद्रोह किया। शाहजहां ने इससे लाभ उठाने का प्रयत्न किया। पहले शाहजादा मुराद को मध्य एशिया भेजा गया और उसने सफलता भी प्राप्त की। मुराद के वापस आ जाने पर 1645 ईस्वी में शाहजादा औरंगजेब को भेजा गया। प्रारंभिक सफलता के पश्चात औरंगजेब को भी वापस आना पड़ा। 1647 ईस्वी, इस प्रकार मध्य एशिया को अपने अधिकार में करने का शाहजहां का प्रयत्न असफल हुआ। चौथा, कंधार। कंधार सर्वदा से मुगलों और फारस ईरान के शासकों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ था। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कंधार पर फारस ने अधिकार कर लिया था। 1628 ईस्वी में उसके फारसी किलेदार अली मर्दन खान ने स्वेच्छा से यह किला मुगलों को सौंप दिया। मध्य एशिया में मुगलों के आक्रमण की असफलता से प्रोत्साहित होकर 1648 ईस्वी में फारस ने कंधार पर आक्रमण किया और इससे पहले कि किले की कोई सहायता पहुंच पाती उस पर अधिकार कर लिया। 1649 ईस्वी में औरंगजेब कंधार पहुंचा, परंतु उसे जीतने में असफल रहा। 1652 ईस्वी में औरंगजेब को पुनः कंधार जीतने के लिए भेजा गया, वह पुनः असफल रहा। इसी प्रकार 1653 ईस्वी में दारा शिकोह द्वारा कंधार के जीतने का भी प्रयत्न भी असफल रहा। इस प्रकार शाहजहां के समय में कंधार एक बार मुगलों को प्राप्त अवश्य हुआ, परंतु पुनः खो गया। पांचवा, उत्तराधिकार का युद्ध। 6 सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसने दरबार और झरोखा दर्शन जाना भी बंद कर दिया। इससे राज्य में दुश्चिंताएं उत्पन्न हो गई। बादशाह शक्ति, शांति और व्यवस्था का प्रतीक था। प्रत्येक बादशाह की मृत्यु पर संघर्ष और अव्यवस्थाएं की आशंका रहती है, इससे सभी की हान की संभावना होती थी। इस अवसर पर ऐसा भी हुआ। शाहजहां की मित्र की संभावना मात्र से विभिन्न व्यक्ति और वर्ग अनेक प्रकार की चिंताएं करने लगे। शाहजहां का प्रत्येक पुत्र गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। विभिन्न सरदार विरोधी शाहजादे का समर्थन करने के लिए तत्पर थे। हिंदू ऐसे शाहजादे का समर्थन करना चाहते थे जो धार्मिक उदारता के पक्ष में हो। कट्टर मुसलमान ऐसे शाहजादे का पक्ष लेने के लिए तत्पर थे जो इस्लाम के सम्मान की रक्षा करे। और जनसाधारण अशांति और अव्यवस्था की आशंका से भयभीत था। विभिन्न आशंकाओं और संदेहों का निवारण करने के लिए शाहजहां ने कभी कभी झरोखा दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया और यह अनुभव करके कि उसका स्वास्थ्य शासन का उत्तरदायित्व संभालने के योग्य नहीं है, उसने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपने सभी सरदारों के सम्मुख अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं के जीवित रहने तक अपनी ओर से शासन करने का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया। उसका आशय यह था कि ऐसे करने से संभवतः उसके पुत्रों के सिंहासन के लिए युद्ध नहीं होगा, परंतु उत्तराधिकार के विषय में मुस्लिम कानून बहुत लचीला था। अधिकांशतया तलवार की शक्ति के आधार पर ही उसका निर्णय हुआ करता था। शाहजहां ने स्वयं इसी के आधार पर अपने सभी विद्रोहियों को समाप्त करके सिंहासन पर अधिकार किया था। शाहजहां ने पुत्रों ने भी यह निश्चय किया। सिंहासन के लिए शाहजहां के चारों पुत्रों में युद्ध हुआ। उसे मुगल इतिहास में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से पुकारा गया है। ऐसा नहीं कि उत्तराधिकार के युद्ध इससे पहले या इसके बाद नहीं हुए। हुमायूं को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा था। अकबर का विरोध उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने किया था। जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। शाहजहां ने भाइयों का कत्ल करके गद्दी प्राप्त की तथा औरंगजेब के पुत्रों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, परंतु शाहजहां के पुत्रों में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध भीषणतम था। वह बादशाह के जीवित रहते हुए भी लड़ा गया था तथा संभवतः गंभीरतम प्रश्नों एवं प्रश्नावलियों व्यक्तियों के लाभ और हानियों से संबंधित था। इस कारण इस युद्ध को अस्पष्टतया उत्तराधिकार के युद्ध की संज्ञा दी जाती है। बादशाह के जीवित रहते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया यह भीषण युद्ध मुगल इतिहास का पहला उदाहरण है। शाहजहां की सभी महत्वपूर्ण संतानें जिनका नाम इतिहास में उल्लेखनीय है, उसकी प्रिय बेगम मुमताज महल से उत्पन्न हुई थी। उसकी 14 संतानों में से 7 जीवित रहीं। इनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं, जिनका नाम था जहानारा, जन्म 1614 ईस्वी, दारा सिको, जन्म 1615 ईस्वी, शाह सूजा, जन्म 1616 ईस्वी, रोशनारा, जन्म 1617 ईस्वी, औरंगजेब, जन्म 1618 ईस्वी, मुराद बख्श, जन्म 1624 ईस्वी और गौहानारा, जन्म 1631 ईस्वी। इनमें से प्रत्येक ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया। चारों भाई की सिंहासन के लिए प्रयत्नशील न थे, बल्कि बहनों ने भी किसी न किसी भाई का पक्ष लिया। जहानारा दारा सिको के पक्ष में थी, रोशनारा ने औरंगजेब की सहायता की और गौहानारा ने मुरादबख्श का पक्ष लिया। दारा सिको शिक्षित सुसभ्य उदार व्यक्ति विचारों का व्यक्ति था। वह सच्चरित्र दयालु और पितृभक्त था। उसके धार्मिक विचार अत्यधिक उदार थे। बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति उसे सद्भावना थी। उसका जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था। वह सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। शाहजहां ने दारा को साहुल बंद इकबाल की उपाधि से भी विभूषित किया था। उसे पंजाब की सूबेदारी प्राप्त थी, परंतु वह बादशाह के निकट ही रहता था। शासन का उसे अनुभव था। उसमें साहस, धैर्य, उत्साह की कमी न थी। अपने चरित्र और विचारों के लिए वह बादशाह और जनसाधारण का प्रिय था। संभवतया भारत के लिए सबसे उपयुक्त बादशाह सिद्ध होता, परंतु निसंदेह दारा औरंगजेब की तुलना में सेनापति एवं कूटनीति की दृष्टि से दुर्बल था। शाहजहां ने जब उसे राज्य की उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जहां से उसे कुछ लाभ कुछ कठिनाइयां भी हुईं, उसे बादशाह की सम्मति से राज्य का शासन प्रसार करना था और अपने भाइयों में सिंहासन के युद्ध भी करना था। बादशाह के प्रतिनिधि की दृष्टि से कार्य करते हुए अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र न था, जबकि प्रत्येक कार्य को उसके भाई और उसके समर्थक शंका और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। उसके सभी भाइयों ने अनुभव किया कि दारा अपनी स्थिति को दृढ़ करने का प्रयत्न कर रहा है। इस कारण वे शीघ्र उसके युद्ध करके सत्ता हथियाने के लिए उत्सुक हो गए। शाहजहां का प्रभाव समाप्त हो गया। शाह सुजा उस समय बंगाल के सूबेदार था। वह एक आकर्षक व्यक्ति और योग्य सैनिक था, परंतु वह आराम पसंद था और बंगाल की जलवायु और संपत्ति से उसे बिलासप्रिय बना दिया था। धार्मिक दृष्टि से वह सिया था और सियाओं का समर्थन प्राप्त था। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार व साहसी, कट्टर, परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी था। कंधार और मुख्यतया मध्य एशिया के युद्धों ने उसे एक योग्य सेनापति बना दिया था। कूटनीति में वह अपने सभी भाइयों से श्रेष्ठ था और कलम और तलवार दोनों का प्रयोग कुशलता से कर सकता था। धार्मिक दृष्टि से वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा कट्टर सुन्नी वर्ग और सरदार उसके बादशाह बनाकर इस्लाम की प्रतिष्ठा स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। पिछले कई दशकों से भारत में इस्लाम के प्रतिक्रियावादी तथा प्रभावशाली होते जा रहे थे। जहांगीर और शाहजहां की धार्मिक नीतियां को इन प्रतिक्रियावादी तत्वों ने प्रभावित किया था। शेख अहमद सरहिंदी और अब्दुल हक देहलवी इन तत्वों का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उनका उद्देश्य भारत में इस्लाम के आदर्शों पर आधारित राज्य की स्थापना करना था। इस कारण इस मत के समर्थक दारा सिको के विरोध में औरंगजेब के समर्थक बन गए। यद्यपि डॉक्टर एम तहर अली ने इस विचार का तीव्र विरोध किया और उन्होंने आंकड़े देकर यह बताया कि औरंगजेब के पक्ष में भी पर्याप्त राजपूत और मराठा सरदारों का होना इस युद्ध में धर्म का प्रभाव को गौण बना देता है। इस कारण उत्तराधिकार युद्ध का कारण विरोधी धार्मिक विचारधाराएं भी बन गई। मुराद भावना प्रधान और अव्यवहारिक था, वह बहादुर और आराम पसंद दोनों था। युद्ध क्षेत्रों में वह कट्टर साहसी और प्रत्येक खतरे को निर्भीकतापूर्वक उठाने वाला सैनिक था तथा सेनापति था, परंतु वह हरम में एक विलासी शाहजादा था। वह उदार और प्रफन्नचित था, परंतु उसमें चालाकी, कूटनीति, संतुलन और व्यवहारिकता की कमी थी। व्यवहारिक राजनीति का न तो उसे ज्ञान था और न उसको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही किया। हठी और असंयमी बच्चे की भांति वह किसी से भी लड़ सकता था तथा सरलता से दूसरे हाथों में खिलौना भी बन सकता था। वह गुजरात का सूबेदार था। शाहजहां की बीमारी का समाचार प्राप्त करके इन चारों शाहजादों में से प्रत्येक ने अपने अपने शक्ति अपने अपने तरीके से बादशाह बनने का प्रयत्न आरंभ कर दिए। शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद ने बादशाह को देखने के बहाने राजधानी की ओर बढ़ने का आग्रह किया। शाहजहां ने यह सिद्ध करने के लिए कि वह जीवित है सभी शाहजादों को अपने हस्ताक्षरों से युक्त पत्र भेजे। सभी शाहजादों का सेनाएं लेकर राजधानी की ओर बढ़ना राज्य के लिए संकट उपस्थित कर सकता था। शाहजहां ने शाहजादों को यह सूचना की भेजी कि वे स्वयं केवल अपने अंगरक्षकों को लेकर आगरा हैं, परंतु शाहजादों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें भय था कि दारा सिंह को उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। इस प्रकार स्थिति ऐसी हो गई कि शाहजादों का विश्वास बादशाह और उसके संदेशों से उठ गया अथवा उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, बल प्रयोग के तत्पर हो गए। मुराद ने अपने गुजरात में और शाहजहां ने बंगाल में स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। जनवरी 1658 ईस्वी में सर्वप्रथम शाह शुजा ने अपनी सेनाओं को लेकर राजधानी की ओर बढ़ा। मुराद ने अपनी दीवान अलीन की कत्ल करा दिया, सूरत को लूटा और फरवरी में आगरा की ओर बढ़ा। औरंगजेब ने बीजापुर, गोलकुंडा के राज्यों से उनकी समर्थनानुसार धन एकत्रित किया, अपने प्रमुख सहायक मीर जुमला में भी धन वसूल किया और दक्षिण में अपनी स्थिति दृढ़ करके फरवरी से में आगरा की ओर बढ़ा। परंतु औरंगजेब ने अपने स्वतंत्र बादशाह घोषित नहीं किया। उसने सिर्फ यह बहाना किया कि वह अपने बीमार पिता से मिलने जा रहा है। दारा के तीनों भाई दारा से ईर्ष्या करते थे और आपस में पत्र व्यवहार करते थे। औरंगजेब इसमें सर्वाधिक सफल रहा। उसने न केवल इस बात का सफल प्रयत्न किया कि उसकी गतिविधियों का सूचना आगरा न पहुंचे, बल्कि उसने मुराद के लिए एक समझौता करने पर भी सफलता पाई। मुराद के साथ यह समझौता हुआ कि दोनों मिलकर दारा निकोह को नष्ट करेंगे। उन्होंने यह घोषित किया कि उसका आशय इस्लाम की सुरक्षा के लिए विधर्मी दारा को समाप्त करना है। यह निश्चय हुआ कि सफलता के पश्चात अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर और सिंध मुराद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में प्राप्त होंगे और लूट के माल में 1/3 भाग भी मुराद को मिलेगा। बाकी साम्राज्य और धन औरंगजेब को प्राप्त होगा अथवा उनके बारे में जो भी चाहे वह समझौता शाहजहां के साथ कर सकता था। शाहजहां ने इन विद्रोही सेनाओं का मुकाबला करने के लिए एक सेना दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह और जय सिंह के नेतृत्व में पूर्व की ओर भेजी तथा दूसरी सेना राजा जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजी। उनको आदेश दिए गए थे कि पहले तो वह शाहजादों को समझा बुझाकर अपने सूबे में वापस लौटने के लिए बाध्य करें और यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तो शाहजादे का जीवन नष्ट नहीं किया जाए। शाही सेना का मुकाबला शाहजहां से बनारस से 5 मील दूर बहादुरपुर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ। शाहजहां की पराजय हुई और वह बंगाल की ओर भाग गया। इसी अवसर पर दक्षिण में भी युद्ध हुआ। अप्रैल 1658 ईस्वी में दीपालपुर नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद की सेनाएं मिल गई थी। राजा जसवंत सिंह को इसका पता न लग सका। उसे केवल मुराद से मुकाबला होने की आशा थी। वह मुराद और औरंगजेब की सम्मिलित सेनाओं से युद्ध करने के लिए तैयार न था। इसके अतिरिक्त कासिम खां का व्यवहार संदेहजनक था, परंतु उस समय न तो संधि चर्चा का विशेष समय रह गया था और न उससे वापस लौटाना सम्मानपूर्ण माना। उज्जैन से 14 मील दूर धर्मट नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। युद्ध में कासिम खान ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया और युद्ध के बीच में ही भाग खड़ा हुआ। राजा जसवंत सिंह और उसके राजपूतों का युद्ध का संपूर्ण भार उठाना पड़ा, परंतु डटकर मुकाबला करने के उपरांत भी उनकी विजय पराजय हुई। शाही सेना तितर बितर हो गई और राजा जसवंत सिंह को घायल स्थिति में युद्ध भूमि से हटाया गया। यही वह ऑफर था जबकि उसके जोधपुर वापस लौटने पर उसकी रानी ने युद्ध क्षेत्र से भागने के अपराध में उसे किले में घुसने नहीं दिया था। धर्मट के युद्ध के जीतने के पश्चात औरंगजेब और मुराद के सेनाएं ग्वालियर होती हुई आगे बढ़ी। दारा शाहजहां की आज्ञा प्राप्त करके उनका मुकाबला करने के लिए आगरा से बाहर निकला। आगरा से 8 मील दूर सामूहगढ़ नामक स्थान पर 8 जनवरी 1668 को दारा ने औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं का मुकाबला किया। दारा ने आरंभ में एक भूल की, औरंगजेब और मुराद की सेनाएं लगातार चलते रहकर सामूगढ़ पहुंची थी और थकी हुई थी। दारा ने उसी समय उन पर आक्रमण नहीं किया बल्कि उनको एक दिन आराम करने का अवसर दे दिया। 8 जून को युद्ध का निर्णय हुआ। दारा की पराजय हुई, उसे युद्ध स्थल छोड़कर भागना पड़ा। दारा ने शर्म के कारण शाहजहां से मिलना भी पसंद नहीं किया। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक धन लेकर वह दिल्ली की ओर चल दिया। सामूगढ़ के युद्ध ने दारा और भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। औरंगजेब स्पष्ट रूप से विजयी हुआ था। उसने आगरा के किले का घेरा डाल दिया, यमुना नदी के पानी को किले में जाने से रोक दिया और शाहजहां को कुछ देने के लिए फाटक खोल देने के लिए बाध्य किया। बाप बेटे में पत्र व्यवहार हुआ और समझौते का मार्ग खोजा गया। परंतु जब औरंगजेब अपने पिता से मिलने जा रहा था तभी उसके हाथ एक पत्र लगा जिसे शाहजहां ने दारा को लिखा था, जिससे स्पष्ट होता था कि शाहजहां उस समय भी बड़े पुत्र के पक्ष में था। औरंगजेब अपने पिता से मिलने नहीं आया गया। उसके पश्चात बाप बेटे का पत्र व्यवहार तो होता रहा किंतु भेंट कभी नहीं हुई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष शाहजहां ने आगरा किले में बंदी की भांति व्यतीत किए। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के विभिन्न कारण थे। दारा अपने संपूर्ण तोपखानों को युद्ध स्थल पर नहीं ले जा सका। आरंभ में उसके सहयोग भी उस समय किया गया जबकि शत्रु सेना उसकी मार में न थी। बाद में वह अपने तोपखानों और शत्रुओं के बीच फंस गया जिससे तोपखाने का प्रयोग ठीक प्रकार न हो सका। दारा ने शत्रुओं की थकी हुई सेना को एक दिन आराम करने का ऑफर दे दिया। उसकी सेना के बाएं भाग का सेनापति रुस्तम खां ठीक समय पर सहायता न पहुंचने कारण लड़ता हुआ मारा गया और उसका बाम पक्ष दुर्बल हो गया। अपने बाम पक्ष के सहायता देने के लिए जब दारा मध्य से हटा तो अपने ही तोपखाने के सामने आ गया। शत्रु के तोपखाने की मार से बचने के लिए अपने कुछ सरदारों के कहने पर वह हाथी के हौदे से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया। हौदे को खाली देखकर उसके सैनिकों का मनोबल समाप्त हो गया। उसके सैनिकों ने समझा कि दारा मारा गया और वे हतोत्साहित होकर भाग खड़े हुए। राजपूतों ने दारा का साथ दिया और युद्ध के अंत में तक लड़े लेकिन मुसलमान सरदारों के द्वारा ने दारा का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके दाहिने पक्ष के सेनापति खलीलुल्लाह और सैनिकों ने युद्ध में केवल दिखावे के लिए भाग लिया। इन्हीं कारणों के दारा पराजय हुई। यह कहना गलत हुआ कि दारा की सेना दुर्बल थी। वास्तव में उसकी सेना शत्रु सेना से श्रेष्ठ थी। उसका साथ शाही सेना के रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले सैयद वफादार सूरबीर राजपूत थे। उसे रुस्तम खां, छत्रसाल, हाड़ा और दिलेर खां अफगान सदृश योग्य और साहसी सेना प्राप्त थे। उसका तोपखाना भी शक्तिशाली था परंतु तब भी अधिक अनेक से मुसलमान सरदारों द्वारा दारा के साथ विश्वासघात करना और औरंगजेब की सेनापतित्व को योग्यता दरासिकों की असफलता के मुख्य कारण बने। आगरा के किले को हस्तगत करने के पश्चात औरंगजेब ने दारा का पीछा करने की जल्दी नहीं की। सर्वप्रथम उसे दारा के लड़के सुलेमान सिकोह को अपने पिता से मिलने से रोकना था क्योंकि उसके साथ अभी भी एक बड़ा सेना थी। इससे भी अधिक औरंगजेब को मुराद बख्श की ओर चिंता थी। मुराद बख्श ने शाहजहां से अपने कार्यों के लिए क्षमा मांगी थी और शाहजहां को राज सिंहासन से हटाने का इरादा भी उसने त्याग दिया। उसने औरंगजेब से स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया। आगरा से औरंगजेब और मुराद की सेनाएं दिल्ली की ओर बढ़ी। इस अवसर पर मुराद भी औरंगजेब के व्यवहार से संकित हो गया। औरंगजेब के स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार और अपने प्रति उदासीनता से मुराद असंतुष्ट हो गया। औरंगजेब ने मुराद को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई। उसने मुराद को कई बार दावत पर बुलाया परंतु मुराद ने प्रत्येक बार आने से इनकार कर दिया। परंतु मथुरा के निकट शिकार के वापस लौटते हुए औरंगजेब द्वारा धन से खरीदे गए और अपने सरदार के कहने पर मुराद ने एक रात औरंगजेब के खेमे में गुजरने का स्वीकार कर लिया। मुराद को खूब शराब पिलाई गई, अच्छा भोजन कराया गया और उसके तंबू में उसके पैरों में मालिश करने के लिए एक दासी को भेज दिया गया। मुराद को घोर निद्रा में सो जाने के पश्चात उसके हथियार उसे अलग कर दिए गए, उसे बंदी बना लिया गया। मुराद से मुक्ति पाकर औरंगजेब दिल्ली की ओर बढ़ा। दारा उस समय तक दिल्ली में एक बड़ी सेना एकत्रित नहीं कर सका था। वह दिल्ली को छोड़कर लाहौर चला गया और औरंगजेब से सरलता से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया और अपने को बादशाह घोषित किया। औरंगजेब ने एक सेना सुलेमान सिकोह का मुकाबला करने के लिए पूर्व की ओर भेजी और स्वयं दारा का पीछा करने के लिए रवाना हुआ। यद्यपि दारा के पास 14,000 की सेना और पर्याप्त धन था परंतु न तो इसमें अधिक सेना एकत्रित कर सका और न औरंगजेब की मुकाबला करने का साहस किया। वह लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से बक्सर बखर भाग गया औरंगजेब ने मुल्तान तक उसका पीछा किया। उसके पश्चात अपने सरदारों को उसका पीछा करने के लिए छोड़कर वह दिल्ली वापस लौटा और तब शाह शुजा का मुकाबला करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा। तब दारा फुजा वहां से गुजरात गया। वहां के सूबेदार ने उसका स्वागत किया। अब दारा या तो दक्षिण में जा सकता था अथवा राजस्थान में उसे सहायता मिल सकती थी। राजा जसवंत सिंह ने उसे सहायता का आश्वासन दिया और दारा राजस्थान की ओर बढ़ा। परंतु जब वो अजमेर पहुंचा तो उसे यह सूचना प्राप्त करके बड़ी निराशा हुई कि औरंगजेब शाह शुजा को परास्त करके वापस आ गया था और जयपुर के राजा जय सिंह के कहने से राजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेवाएं स्वीकार कर ली थी। राजा जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार करके करने का अतिरिक्त औरंगजेब ने उसे गुजरात का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। दारा ने अजमेर के निकट देवरई के दर्रे में औरंगजेब का मुकाबला किया परंतु उसकी पराजय हुई और उसे भागना पड़ा। इस बार उसे गुजरात में शरण प्राप्त नहीं हुई थी और वह अफगानिस्तान जाने के उद्देश्य से सिंध में मुड़ गया। बखर के किले की सुरक्षा अभी तक दारा का एक वफादार सेवक कर रहा था। दारा ने उसकी रक्षा के लिए जाने का निर्णय किया। उसी समय उसकी पत्नी नादिरा बेगम बीमार हो गई। दारा ने मलिक जीवन नामक एक बलूची सरदार के यहाँ शरण ली। दारा ने एक बार शाहजहाँ के क्रोध से मलिक जीवन की रक्षा की थी। वहीं वह नादिरा बेगम की मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा के अनुसार दारा ने अपने बचे हुए अंगरक्षकों के साथ उसके शरीर को लाहौर में दफनाने के लिए भेज दिया। दारा अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु और अपनी परिस्थितियों के कारण पूर्णतया हताश हो चुका था। मलिक जीवन भी आसान फरमोश निकला। उसने दारा और उसके दो छोटे पुत्र सिपिर सिको और औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। दारा को दिल्ली ले जाकर गंदे कपड़े में एक गंदे हाथी पर बैठाकर शहर में घुमाया गया। शहर में अनेक नागरिक रोए और कुछ एक ने मालिक जीवन और साथियों पर आक्रमण कर दिया। दारा का प्रति जनता की सहानुभूति को देखकर औरंगजेब ने दारा को शीघ्र समाप्त करने का निर्णय किया। औरंगजेब ने एक विशेष न्याय समिति नियुक्त की जिसने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 30 अगस्त 1659 ईस्वी के अंतिम दिनों में दारा का कत्ल कर दिया गया। उसके शरीर को सड़कों पर दिखाया गया और अंत में हुमायूं के मकबरे में उसे दफना दिया गया। अब औरंगजेब का एक शत्रु बाकी रह गया, दारा का एक छोटा बेटा सुलेमान सिको अभी जीवित था। सामूगढ़ के युद्ध का उसकी सेना पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था। राजा जय सिंह और दिलेर खां उसका साथ छोड़ गए थे। उसकी सेना की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी। उसने भाग कर इलाहाबाद के किले में शरण ली। पंजाब ने अपने पिता से मिलने का प्रयत्न किया परंतु असफल होने पर गढ़वाल में जाकर शरण ली। गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह ने उसे औरंगजेब को देने से इनकार कर दिया परंतु राजा जय सिंह ने राजा के लड़के मेदनी सिंह को फुसला लिया जिसने चुपके से सुलेमान सुको को राजा जय सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार 1660 ईस्वी के अंतिम दिनों में सुलेमान सिको पकड़ा गया। उसे ग्वालियर के किले में बंदी रखा गया जहाँ धीरे धीरे जहर देकर उसे मार दिया गया। 1662 ईस्वी मुरादबख्श को 1661 ईस्वी में दीवान अलीन की हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया जा चुका था परंतु औरंगजेब ने दारा के छोटे बेटे सिपिर सिको को जीवित छोड़ दिया। 12 वर्ष के कारावास के पश्चात उसे मुक्त कर दिया गया और औरंगजेब ने अपनी तीसरी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। इस प्रकार औरंगजेब ने मुराद के बेटे इजिद बख्श को जीवित छोड़ दिया और अपनी पांचवी लड़की की शादी उसके साथ कर दी। इस प्रकार अपने सभी विरोधियों को समाप्त करके और पिता को कैद करके औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का बादशाह का पद ग्रहण किया। यह केवल एक अनुमान का विषय है कि औरंगजेब के स्थान पर दारा सिको इस उत्तराधिकारी के युद्ध में विजयी होता तो भारत के इतिहास का क्या प्रभाव पड़ता। औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से कट्टर सिद्ध हुआ। उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति अकबर की उदार नीति के विपरीत सिद्ध हुई। उससे भारत को बहुसंख्यक हिंदू जनता और बहादुर राजपूत मुगलों के विरोध में हो गया। औरंगजेब ने हिंदू और मुसलमानों में अंतर करके राज्य की एकता को नष्ट कर दिया जिसे अकबर ने स्थापित किया था और जागीरदार शाहजहां ने सुदृढ़ किया था। इससे राज्य में विभाजन हुआ, विद्रोह हुए और मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ। दारा सिको के इस युद्ध में जीतने और मुगल सिंहासन प्राप्त करने में संभवता यह न होता। दारा धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार था, इस कारण हिंदुओं और राजपूत सरदारों का उसे विश्वास प्राप्त था। यदि वह मुगल बादशाह बना होता तो संभवतया भारत में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति की विजयी हो जाती और धार्मिक कट्टरता में प्रतिक्रियावादी तत्वों की शक्ति प्राप्त करने का अवसर न मिलता। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य विभाजन, विद्रोह और दुर्बलता से बच जाता और संभवतया अधिक समय तक जीवित रह पाता। परंतु यह सभी अनुमान का विषय है। औरंगजेब के पक्ष में वह एक उसने और अधिक रक्तपात नहीं किया। या इससे स्पष्ट होता है कि उसने दारा और मुराद के छोटे पुत्रों को जीवित ही नहीं रहने दिया था, बल्कि अपने पुत्रियों के विवाह भी उसके साथ किए। छठवां, शाहजहां के अंतिम वर्ष और मृत्यु। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में केसाह बुर्ज में एक बंदी की भांति व्यतीत किया। औरंगजेब ने उसके हीरे जवाहरात ही उसे नहीं छीन लिए, बल्कि उसे आराम की साधारण वस्तुओं से भी वंचित रखा। उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री जहां नारा थी, जिसने मृत्यु तक उसकी सेवा की। 1666 ईस्वी में उसकी पत्नी मुमताज महल को याद करते हुए, ताजमहल को निहारते हुए शाहजहां की 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। ताजमहल में उसकी प्रिय पत्नी की कब्र के निकट ही शाहजहां को साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। सातवां, मुमताज महल। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। इतिहास में प्रख्यात शाहजहां के सभी पुत्रों और पुत्रियों का जन्म उसी से हुआ। उसका जन्म बचपन का नाम अर्जुमंद बानू बेगम था। 1594 ईस्वी में उसका जन्म हुआ और 1612 ईस्वी में उसका विवाह हुआ। शाहजहां से प्रत्येक 14 बच्चे हुए। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हुई। मुमताज महल अपने पति के प्रति उदार सुख और दुख के साथ रहती थी। मुमताज महल बहुत सुंदर, सुयोग्य, शिक्षित और उदार स्त्री थी। उसका पिता आसफ खान राज्य का प्रमुख सरदार था, जिसने उसका लालन पालन बहुत ही सुहृदय से किया था। मुमताज महल का गुण उसका पति परायण होना था। उसके अतिरिक्त वह धर्म परायण थी। वह इस्लाम धर्म के अनुसार पूजा पाठ, उपवास आदि नियमापूर्वक करती थी। दान दक्षिणा का भी उसने प्रबंध किया था। गरीबों, अपाहिजों, अनाथों और विधवाओं के प्रति वह बहुत कृपालु थी। वह दिल खोलकर दान करती थी। राजनीति में उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु यह कहा जाता है कि उसके कट्टर धार्मिक विचारों के प्रभाव शाहजहां पर पड़ा। उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए उसके याद में शाहजहां ने आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया। आठवां, शाहजहां का चरित्र और व्यक्तित्व और इतिहास में स्थान। शाहजहां के चरित्र, व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद रहा है। इसी कारण यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल था अथवा नहीं। निश्चय तथ्य कुछ ऐसे थे जिसमें शाहजहां के चरित्र को समझना उसकी कार्यों का मूल्यांकन करना कुछ असुविधाजनक है। शाहजहां के चरित्र और व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक तरफ वह सुशिक्षित, सभ्यशालीन, चरित्रवार, उदार, न्यायप्रिय, प्रजापालक, कला प्रेमी और साहित्य की प्रगति में सहायता प्रदान करने वाला था, और दूसरी तरफ वह कठोर, आतंकी, ऐश्वर्य पसंद, स्वार्थी और धर्मांध था। समय समय पर प्रकट होने वाली इस विरोधी प्रकृति के कारण डॉक्टर S.S.R. शर्मा लिखते हैं, कुछ मामलों में शाहजहां में विरोधाभास था। शाहजहां सुशिक्षित, सभ्य और मिलनसार था। उसने स्वयं अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और सभी विद्वानों को वह सम्मान करता था। फारसी और संस्कृत भाषा की प्रगति उसके संरक्षण में हुई। ललित कलाओं का उसे शौक था। उसने स्थापत्य कला, चित्रकला और गायन कला में उन्नति में सहयोग दिया। वह स्वयं अच्छा गायक था। बहुविवाह करते हुए भी वह पत्नीव्रत था। मुमताज महल से उसका प्रेम इतिहास की कहानी बन गया। उसे अपने बच्चों से में प्रेम था और उसने सभी को पूर्ण और उदारता शिक्षा प्रदान की थी। वह एक योग्य सैनिक सेनापति था। अपने पिता के समय में अनेक युद्धों में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। अपनी बादशाहत के समय में वह अंत तक युद्ध की योजनाएं स्वयं बनाता रहता था। एक साम्राज्य निर्माता के दृष्टि से उसने अहमदनगर के राज्य को जीतकर राज्य विस्तार किया तथा बीजापुर और गोलकोंडा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मध्य एशिया और कंधार को पुनः प्राप्ति के लिए उसने प्रयत्न किए थे। शासन की दृष्टि से वह न्यायप्रिय प्रजापालक था। उसके समय में व्यापार, उद्योग और कृषि उन्नतशील स्थिति में थे। राज्य धन धान्य से पूर्ण था। उसे शासन प्रबंध में रुचि थी और वह उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करता था। उसने मनसबदारी प्रथा में सुधार किए। उसने अकाल और कठिनाइयों के अवसर पर प्रजा की सहायता की। धार्मिक दृष्टि से उसके विचार और उसके कार्य अकबर और जागीर की तुलना में संकीर्ण और अनुदार सिद्ध हुए, परंतु तब भी हिंदुओं और ईसाइयों में दैनिक धार्मिक जीवन में उसको हस्तक्षेप नहीं किया। मिस्टर डेलावल ने लिखा है, कांबे कोष्टक में खंभात में गौ हत्या बंद कर दी गई थी। मिस्टर मेनरिक ने लिखा है, हिंदू जिले में पशुवध निषेध था। शाहजहां हिंदुओं के सभी उत्सवों त्योहारों में भाग लेता था और तुलादान, झरोखा दर्शन जैसे आदि हिंदू प्रथाएं उसके समय में पहले शासकों की भांति मानी जाती रही थी। उसने राजपूत रफ़्तारदारों के साथ सम्मान और विश्वास का व्यवहार किया, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पहले की भांति तत्पर रहे। सभी बातें शाहजहां के पक्ष में ठीक मानी जाती हैं। परंतु शाहजहां के चरित्र और व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी है। अनेक ऐसे अवसर आए और ऐसी घटनाएं हुई जब शाहजहां ने कठोरता और बर्बरता से कार्य किए। अपने पिता के विरुद्ध उसने विद्रोह किया था तथा अपने सभी भाइयों के राज्य के संभावित उत्तराधिकारियों को क्रूरता से समाप्त करके उसने राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। एक पिता की दृष्टि से उसने दारासिकों के प्रति अधिक प्रेम दर्शाकर पक्षपात का परिचय दिया था और अपने पुत्रों पर नियंत्रण रखने में वह असफल रहा था। कंधार और मध्य एशिया के असफल आक्रमणों ने उसकी सैनिक दुर्बलता को प्रकट किया, जिससे राज्य के सम्मान में कमी आई। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार शाहजहां मनुष्य और शासक दोनों के रूप में असफल रहा। उसके समय में किसानों पर कर का भार अधिक हो गया और उद्योग तथा राज्य की उन्नति होने के पश्चात भी राज्य की बढ़ती हुई संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया गया। शाहजहां ने अपने पितामह और पिता द्वारा संचित धन और राज्य की बढ़ती हुई आय का प्रयोग अपने व्यक्तिगत शौकों की पूर्ति के लिए किया। उसकी विभिन्न इमारतें, तख्ते, ताऊस आदि उसके प्रमाण हैं। धार्मिक दृष्टि से उसके समय में अकबर की उदारता का समय समाप्त हो गया था। उसके समय में ओरछा हिंदू के मंदिरों को नष्ट किया गया और युद्ध में पकड़े गए बंदियों का इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। बनारस में अनेक हिंदू मंदिरों को शाहजहां के आदेश से तोड़ दिया गया और अकेले शहर में ही संभवतः 76 हिंदू मंदिर नष्ट किए गए। हिंदुओं पर कर का भार बढ़ा दिया गया था। हिंदुओं पर पुनः तीर्थयात्रा कर लगा दिया गया था। पंजाब और कश्मीर में हिंदू और मुसलमान विवाह कर देते थे रोक दिया गया। हिंदू और मुसलमान ढंग के वस्त्र पहनने से रोक दिया गया और हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई। यद्यपि बाद में समय में दारासिकों के प्रभाव के कारण इस अनुदार नीति में कुछ परिवर्तन किया गया, परंतु तब भी उसके समय में धार्मिक अनुदारता का समय आरंभ हो गया था। शाहजहां ने मक्का और मदीना के धार्मिक व्यक्तियों और निवासियों के लिए बहुमूल्य उपहार और दान के लिए धन भेजा। इस प्रकार शाहजहां के चरित्र का दूसरा पहलू असफलता, अपव्यय और अनुदारता का है। उपर्युक्त दोनों पक्षों पर ठीक विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि शाहजहां के चरित्र में कुछ दोष थे। कुछ क्षेत्रों में उसका समय असफलता और हानियों का था, परंतु यदि उसके जीवन से उन कार्यों को निकाल दिया जाए अथवा उनके महत्व को कम कर दिया जाए तो शाहजहां ने सिंहासन पर बैठने के अवसर पर किए गए कभी कभी क्रोधवश अथवा परिस्थितियों बस किए तो शाहजहां का व्यक्तित्व, चरित्र और इतिहास में स्थान पर्याप्त अच्छा स्वीकार किया जा सकता है। उसके चरित्र में अवगुण कम और गुण अधिक स्वीकार किए जा सकते हैं। निसंदेह उसकी असफलताएं कम और सफलताएं अधिक थीं। शाहजहां के आलोचकों में यूरोपियन इतिहासकार अधिक हैं, परंतु वह भी उसके दोषों को गिराने के पश्चात उसके समय को श्रेष्ठ बताते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने शाहजहां की कटु आलोचना की है, परंतु उसने भी लिखा है, शाहजहां के व्यक्तिगत चरित्र और उसके फाफन की सफलता के बारे में चाहे जो भी धारणा रखी जाए, परंतु उसमें कोई विवाद नहीं है कि उसका समय मुगल वंश और मुगल साम्राज्य की पराकाष्ठा का था। भारतीय इतिहासकारों में से अधिकांश उसको इतिहास में अच्छा स्थान प्रदान करने के पक्ष में है। शाहजहां का स्थान निसंदेह अपने पितामह अकबर से निम्न तथा अपने पिता जहांगीर से श्रेष्ठ माना जा सकता है। 9वां, शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल था। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल था अथवा नहीं, यह इतिहासकारों के लिए विवाद का प्रश्न है। अनेक इतिहासकार इसे मुगल काल का ही नहीं वरन मध्ययुगीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं, और इसमें संदेह नहीं कि यदि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल मान लिया जाए तो मध्ययुगीन भारत के इतिहास के स्वर्ण काल का स्थान उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। परंतु विभिन्न इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि शाहजहां के काल में बाहरी चमक दमक के कारण उसे मुगल काल का स्वर्ण काल कहना केवल भ्रमवश मान लिया जाता है, अन्यथा यह स्थान उसे प्राप्त नहीं होना चाहिए। उन्हीं में से कुछ इतिहासकारों का यहाँ तक कहना है कि कुछ दृष्टिकोण से तो मुगल वंश की दुर्बलताओं का आरंभ उसके समय से ही हो गया था, इस कारण शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल अथवा नहीं है, यह प्रश्न विवादपूर्ण है। शाहजहां के शासनकाल के आलोचकों में से अधिकांश यूरोपीय इतिहासकार हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार 1627 से 1658 ईस्वी तक प्राय 30 वर्ष का शाहजहां का शासनकाल साधारणतया मुगल शासन का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। निसंदेह वह दृष्टि से वह संपन्नता का युग था। उस समय में विदेशी युद्ध बहुत कम हुए, देश में शांति और समृद्धि थी तथा राजकोष भरपूर था। शाहजहां ने अपने पितामह और पिता से अतुल संपत्ति प्राप्त की थी। फारस में एक दृढ़ साम्राज्य की स्थापना हो जाने के कारण पश्चिम देशों से भारत में व्यापार में वृद्धि हुई थी। यूरोप से आने वाले व्यापार से भारत को बहुत लाभ प्राप्त होता था, परंतु इन सभी लाभों को होते हुए भी यथार्थ में शाहजहां के समय में मुगलों की शक्ति और आर्थिक व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर होने लगी। शाहजहां की फिजूल खर्ची और फफन अधिकारियों साफनदार इमारतों पर किए गए अपव्ययों के कारण किसानों और मजदूरों पर जिन पर साम्राज्य का जीवन निर्भर करते था अत्यधिक बोझ डाल दिया गया। इससे राज्य पर जो आर्थिक संकट आया और उसके उत्तराधिकारी के समय में अधिक स्पष्ट हुआ वह इस महान संगठन के पतन का एक मुख्य कारण बना जिसे शाहजहां ने अकबर और जहांगीर से प्राप्त किया था। इस प्रकार इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, आधुनिक इतिहासकारों मुख्यतया एलिम्फनफटन ने शाहजहां के साथ अनावश्यक पक्षपात किया है। शाहजहां के दरबार की शान शौकत, उसके साम्राज्य की विस्तार और संपत्ति, उसकी इमारतों के सौंदौर्य और मुख्यतया ताजमहल ने आधुनिक इतिहासकारों को चकाचौंध कर दिया और वह उसके अनेक अपराधों को भुलाकर उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। सेनापति की दृष्टि से वह अयोग्य था और उसकी सेना का संगठन नेतृत्व अनुपयुक्त था। स्मिथ ने आगे लिखा है, राज्यों के कार्य में वह निर्दयी, दगाबाज और सिद्धांतहीन था। शाहजहां के न्याय के बारे में स्मिथ लिखता है, शाहजहां का न्याय बर्बर एवं भावनाहीन आतंक से पूर्ण एशिया का साधारण निरंकुशी शासक का न्याय था जिसमें व्यक्तियों के सम्मान का कोई स्थान न था और जिसमें दयालुता नाम मात्र की भी नहीं थी। स्मिथ ने अपने तर्क के समर्थन में अन्य यात्रियों और इतिहासकारों के विचारों का भी प्रस्तुत किया है। वह लिखता है, पीटर मुंडी और अनेक यात्रियों के विवरण देश के कुशासन को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार वह लिखता है, बर्नियर जिसे शाहजहां और औरंगजेब के पक्ष में अथवा विपक्ष में होने का कोई कारण नहीं था और जिसने मुगल शासन के उस समय का वर्णन लिखा है जबकि मुगल वंश पूर्ण रूप से स्थापित, अत्यंत धनवान और विदेशी आक्रमण से मुक्त था। उत्तरी प्रांतों की स्थिति के बारे में लिखा था परंतु प्रत्येक स्थान पर बर्बादी फैली थी। उसी प्रकार स्मिथ ने दरबार के इतिहासकार अब्दुल हमीद के वर्णन को भी अपने तर्क में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और कहा है, अन्य इतिहासकारों की भांति उसने विपत्तियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रकार तत्कालीन यात्रियों इतिहासकारों के वर्णनों के परिणाम के रूप देते हुए स्मिथ ने शाहजहां के शासन और उसके समय की आलोचना की है। उसने लिखा है, जहां तक पीटर मुंडी ने देखा, दक्षिण में अकाल पड़ने के समय राज्य की ओर से पीड़ित जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था जबकि बुरहानपुर में शाहजहां के निवास स्थल पर प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। डॉक्टर जदुनाथ सरकार का दृष्टिकोण शाहजहां के प्रति इतना अदुंदार नहीं है परंतु अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मुगल भारत का अध्ययन, स्टडीज इन मुगल इंडिया में शाहजहां के दैनिक कार्यक्रम का वर्णन उन्होंने किया है तथा लिखा है, यद्यपि शाहजहां अत्यधिक प्रसर्मी था तब भी उसके शासनकाल में मुगल वंश की औन्नति का बीजारोपण हुआ था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने भी अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है, शाहजहां का राज्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। वह पुनः लिखते हैं, उसकी धर्मांधता और अनुदारता औरंगजेब के कट्टर शासन की अग्रदूत थी। उसकी भेंट तथा उपहार स्वीकार करने की प्रथा ने एक प्रकार से रिश्वत को प्रोत्साहन दिया और भेंट एवं उपहार देना राजकीय दरबार में ही नहीं वरन राजकीय परिवार तथा अमीरों और सामंतों में एक प्रथा का रूप धारण कर गई। इससे राज्य प्रबंध में भ्रष्टाचार फैल गया। अपनी बाहरी ठाठ बाट के कारण वह जनता से अनुचित रूप से धन एकत्रित के लिए बाध्य हुए तथा बिलासप्रियता ने जनता के नैतिक स्तर नीचा करने के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें भी संदेह नहीं कि शाहजहां के समय में धार्मिक अनुदारता की नीति आरंभ हो चुकी थी। प्रतिक्रियावादी तत्वों का प्रभाव शासन और राजनीति में बढ़ गया था तथा राजपूतों को भी शासन में पहले की भांति उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में अकबर द्वारा स्थापित राज्य के विभिन्न आधार को संकुचित कर दिया गया था जो निसंदेह हानिकारक था। इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों ने शाहजहां के समय की दुर्बलता की ओर अधिक या कम मात्रा में ध्यान दिलाया है और उसके आधार पर शाहजहां के काल को या तो स्वर्ण काल स्वीकार करने से इनकार कर दिया अथवा उसे केवल सीमित मात्रा में ही मुगल काल का स्वर्ण काल स्वीकार किया है।